अली बेटे।
जी डॉक्टर साहब।
जरा इधर आना।
जी
अली बेटे, तुमसे कितनी बार कहा है कि जिन दवाओं की शीशी एक जैसी है उन्हें एक जगह मत रखो। देखो प्रोजेस्टल और बी कॉम्प्लेक्स की शीशियाँ बिल्कुल एक ही जैसी हैं। पेशेंट अच्छा होना चाहता है और वो बेचारा बीमार पड़ जाएगा।
डॉक्टर साहब ये कैसी बात है, हम इनकी शक्ल तो देखते नहीं है, इस पे लिखा हुआ नाम देखते हैं।
अली बेटा कभी हम इतने मुतमईन होते हैं कि हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस कदर मौतें गलत दवाओं की वजह से होती हैं। हम जैसे लोग इस कदर दवाएं गलत दे देते हैं। तुम्हें क्या लगता है क्या वो पढ़े लिखे नहीं होते? ये सब अनपढ़ होने की वजह से नहीं है। वो मालूमात रखते हैं लेकिन वो इतने मुतमईन होते हैं कि ध्यान ही नहीं देते।
मैं शर्मिंदा हूँ।
कोई बात नहीं।
तुम बिला वजह परेशान हो, तुम्हें करने का जज्बा है, हार मत मानो।
बात यह है कि यह प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है कि जिसके लिए मुझे माहिर आर्किटेक्ट टीम की जरूरत है।
तो ठीक है, एक माहिर टीम बनाओ। पहले रफ उन्हें दे दो, फिर काम उन्हें दे देना ताकि काम आगे बढ़े।
अच्छा आइडिया है, यही काम करूंगा।
पीछे हटने का मतलब है जिंदगी से हारना।
मैं पीछे नहीं हटा, बस काम बड़ा होने की वजह से जरा घबराहट हो रही है। आप जरा ध्यान दें, जरा उन्हें देखें।
ये तो है, पहली झिझक का मतलब है हारना। तुम्हें कामयाब होना ही होगा।
आप वाकई मेरे लिए मेहरबान हैं।
इस मेहरबानी का बदला किसी और तरह से चुका सकते हो।
आप बताएं मैं क्या करूं।
हे, कम ऑन।
ये चाहते क्या है?
अब तुम मुझे आप ना कहो। तुम का लव्स दोस्ती और नजदीकी का एहसास दिलाता है मुझे।
जो हुक्म।
देख आ रहे हैं क्या?
क्या करने जा रहे हो? छोड़ो, जाने तो उन्हें। ये बेकार लोग हैं, आदमी थोड़ी हैं। पता नहीं ये मुल्क कब ठीक होगा, ये मैं भी नहीं बता सकती।
इस तरह के फालतू लोग दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं।
अच्छा, तुम भी इन्हें फालतू लोग कहते हो, तो जाने दो उन्हें।
जरा रोकिए, बता दो इन्हें अभी।
क्या कर रहे हो तुम?
फिर इन लोगों को निकल जाने दें।
ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दूसरी तरफ से चलती हूँ।
मेरे ख्याल में आपको इस तरफ से चलना चाहिए।
क्या तुम जरा ड्राइविंग करोगे? मेरे आसाब जरा खराब हैं।
नहीं, क्योंकि मैं ये गाड़ी चलाना नहीं जानता।
कुछ नहीं करना है, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। आओ बैठो। ये आगे का गियर है, ये पीछे का, और ये न्यूट्रल। ब्रेक और एक्सेलरेटर एक ही जगह है, बस राइट लेके यूज करो। घबराओ नहीं, कुछ नहीं है। ब्रेक छोड़ो, वो सेफ्टी बेल्ट भी लगा लो, अभी हॉर्न बच जाएगा।
मुझे जरा आदत नहीं है ना, इसलिए गियर पर हाथ जा रहा है बार बार मेरा।
आदत पड़ जाएगी। मैं ये कह रही थी अगर तुम्हें जल्दी नहीं है तो किसी जगह चल के चाय या कॉफी पीते हैं।
नहीं जल्दी तो नहीं है, लेकिन देखिए मैं इस जगह को अच्छी तरह नहीं जानता हूँ, प्लीज आप मुझे गाइड करें।
यहीं से सीधे चलो। ऐसा करो यहाँ से आगे राइट ले लो, बोर्ड बोर्ड पर भी ध्यान मत दो।
पर ये तो नो एंट्री है।
कोई बात नहीं, तुम चलो। जानते हो अकेले बाहर आओ तो कुछ सुनने को मिलता है, किसी के साथ बाहर आओ तो कुछ और। ये बेकार फालतू लोग। छोड़ो इन्हें, रुक जाओ, इन्हें जाने दो, रुक जाओ भी, इन्हें निकल जाने दो। क्या कर रहे हो तुम, कहाँ जा रहे हो तुम, छोड़ो इन्हें, जाने
दो। रुकिए, अभी आता हूँ।
आ गया, आ गया। आजा, आजा। बड़ा आया पीछे आने वाला।
कैसे हो तुम, क्या कर दिया तुमने, तुम ठीक हो, डॉक्टर के पास चलोगे?
नहीं, नहीं, बस थोड़ा सा गुस्सा आ गया था।
तुम्हारे हाथ को क्या हुआ?
नहीं, मैं ठीक हूँ, माफ करें।
क्या तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं?
नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं।
क्या मुसीबत है, मोड़ लो, उस ऊपर वाली रोड से चलते हैं, यहां से मत जाओ आप।
ठीक है, सब गड़बड़ कर दी, अगर जमीन पर ना गिरा होता तो उन तक पहुंच जाता।
तुम एक पढ़े लिखे आदमी हो, कोई ओबाश या लोफर तो हो नहीं, इनसे उलझना तुम्हारी शान के खिलाफ है।
उन्होंने मुझे बहुत ही गुस्सा दिला दिया, गड़बड़ हो गई, अभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती।
अलबत्ता तुमने ही उन्हें टेंशन में डाल दिया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया।
मेरा मजाक उड़ा रही हो?
अरे नहीं, मजाक उड़ाना कैसा, मैं तुम्हें दूर से देख रही थी और ये सोच रही थी कि अगर तुम उनके नजदीक पहुंच जाते तो तुमने उस रॉड से उनका सर ही फोड़ दिया होता।
अगर इजाजत दो तो तुम्हें छोड़ने के बाद मैं खुद ही चला जाऊंगा, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ।
ऐसा क्यों?
क्योंकि अभी ये जो एक्सीडेंट हुआ, अभी इस हालत में आखिर, यानी मैं शायद ये कोई अलामत थी कतायुन मैडम।
ये सब बकवास है, ये कैसी बातें करते हो तुम। आओ चलो, जरा पानी से हाथ मुंह धो लो, एक चाय पियो ताकि तबीयत फ्रेश हो जाए, तुम्हें सुकून मिलेगा।
ठीक है,
यहाँ से राइट में चलो, अब तुम्हें यहाँ पे बोर्ड भी नहीं दिखाई देगा। एक्सीलेटर दबाओ, डरो नहीं।
एक बार फिर मैं सॉरी बोलता हूँ।
आओ एक चाय पी लो, तबीयत ठीक हो जाएगी।
जरा मेरा कोट माफ करना।
कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। आ भी जाओ। ओह, क्या हालत हो गई, मैं तो डर ही गई।
सलाम सलाम, खुशामदीद।
बैठो।
माफ करना।
मैं कह रही थी कि
तो कैसी हो तुम? सब ठीक है?
हाँ, यहाँ फोन ही नहीं लगता।
क्या मुसीबत है? कुर्सी से उधर लुढ़क मत जाना।
सलाम जनाब, शुक्रिया यहाँ आने का। सलाम, खुशामदीद।
सलाम।
तुम क्या लोगे?
मेरे लिए भी वही मंगाओ।
मैंने तो अभी तक कुछ ऑर्डर ही नहीं किया।
जो तुम मंगाओ वही।
तुर्की कहवा, मामूली या और कुछ?
यहाँ बॉस ये मैडम है, ये जो कुछ भी ऑर्डर करेंगी मैं भी वही लूंगा।
वही हमेशा वाला लाओ।
जी।
भवे ना चढ़ाओ। डरो मत, तुम्हारी मंगेतर यहां नहीं आने वाली। और अगर आप भी गई तो मैं उसे खुद ही बता दूंगी कि एक इंजीनियर की हैसियत से मैं उसे एक ऐसी जगह लाई हूं जहां पे उसकी थकान दूर हो सके।
हाँ, जगह तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन ऐसी वैसी बातों के लिए नहीं। आप माफ करना। हाँ मुर्तजा, ठीक हूँ। अपने डिजाइन पर काम कर रहा हूँ। क्या बाद में फोन कर सकते हो? शुक्रिया, खुदा हाफिज।
तो तुम अपने डिजाइन पर काम कर रहे हो?
तुमने कहा कि तुम यहाँ मालकिन हो, इसलिए तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो। ये भी तो तुम्हारे काम की प्लानिंग का एक हिस्सा है।
तुम्हारी प्लानिंग नहीं बल्कि हमारी प्लानिंग, एक साथ काम, यानी टीम वर्क।
ये लीजिए। ये लीजिए।
शुक्रिया। बहुत ही मजेदार है। बहुत बहुत शुक्रिया।
मुझे खुशी है कि तुम्हें अच्छा लगा। इतनी शर्म और इतने स्ट्रेस के बाद जरूरी था ना?
मुझे स्ट्रेस नहीं था। मैं आजाद आदमी हूं, बस मैं अपने लिए थोड़ी महदूदियत का कायल हूं।
इस लिहाज से तो क्या तुम्हारे डांट और तुम्हारी मंगेतर जरूरी नहीं है?
नहीं, ये भी महदूदियतों में से एक है। वालिद का एहतराम, मंगेतर की कद्र करना, मैं इन सब चीजों का पाबंद हूँ।
कितने अच्छे बच्चे हो। वेरी गुड। अच्छा है, डरते नहीं बल्कि उनकी इज्जत करते हो।
मेरी जैसी उम्र में डर जैसी चीज कोई मतलब नहीं रखती। मैं एक ऐसी फैमिली में पला बढ़ा हूँ, दर हकीकत ऐसी तरबियत की रविश को अपनाया है कि जिसमें माँ बाप की इज्जत भलाई का बाइस होती है।
ठीक है, तो उनकी इज्जत करो। उन्हें बता दो कि हमारे साथ काम कर रहे हो।
कह दूंगा, देर नहीं हुई है। मेरे पापा को पहले तुम्हारे डैड की नेक नियति पर भरोसा करना होगा, उन्हें मानना होगा, फिर मैं बता दूंगा।
तुम बहुत अच्छी सोच के लड़के हो। इस उम्र के लड़के ज्यादातर इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, बस मैं की रट लगाए रहते हैं, माँ बाप पर ध्यान ही नहीं देते।
मुझे बहुत ही खुशी है कि तुम इज्जत करने को अच्छी सोच बता रही हो। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बहरहाल, मेरे पापा कुछ ऐसी चीजें जानते हैं और ऐसी कुछ चीजें देखी हैं कि जिन्हें ना मैंने देखा और ना जानता हूँ। मुझे भी कुछ ऐसी चीजें मालूम है जिनकी अहमियत नहीं है, लेकिन बहरहाल हम आपस में एक दिन इत्तेफाक कर लेंगे। सलाम, मैं आ गया। भूखा प्यासा थका हारा और फैमिली की मोहब्बत का मोहताज।
सलाम। पानी है, खाना है, बेपनाह मोहब्बत है।
इधर कैसे आना हुआ?
रास्ता भटक गया, सोचा गरीबों की भी खबर ले ली जाए, रिश्तेदारी निभाई जाए, देखूं किसी को कुछ चाहिए तो नहीं। ये मखमली कपड़ा अच्छे से प्रेस।
तुम्हारा चेहरा लाल हो रहा है, किसी से झगड़ा किया?
मिला वजह ज्यादा शोर ना मचाओ। अरे कुछ भी नहीं हुआ। अमीर अली कहाँ है?
उसे लगा कि तुम रात को दादी के घर नहीं जाओगे तो वो चला गया।
उसको कैसे लगा कि मैं अजीज दादी के घर नहीं जाऊंगा?
मुर्तजा साहब ने कहा था।
मुर्तजा साहब, ये साहब कौन है?
मेरे चाचा साहब भाई और मेरे शरीके हयात हैं जनाब।
मुर्तजा? इस तरह से कह रही हो मुर्तजा साहब जैसे किसी बड़े आदमी के बारे में बात कर रहे हो।
अम्मी जान, फैमिली के दामाद के बारे में ऐसी बातें ना करो बेटे।
मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। वो बेचारे हमारे छोटे भाई को ले जाने के बहाने हमारे घर में आया किसी को देखने और मिलने को।
तो तुम्हें भी उसकी इज्जत करनी चाहिए। जिद कर रहे हो या गैरत का ख्याल आया? क्यों?
ठीक है, अगर जबरदस्ती की इज्जत करनी हो तो ठीक है फिर जनाब मुर्तजा साहब।
अच्छा ये तो बताओ, तुम घर जल्दी आने वाले थे ना?
मैं लोगों का मुलाजिम हूँ अम्मी, एक दिन जल्दी आता हूँ, कभी आने में देर हो जाती है, आप माफ कीजिए अम्मी।
जब मैं ये कहती हूँ कि उसकी इज्जत करो तो अपनी भी इज्जत करो मेरे लाडले। तुम इंजीनियर हो, सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, वो मामूली जगह नहीं है।
ऐसा नहीं है कि मैंने और मुर्तजा ने किसी ओपन यूनिवर्सिटी के जरिए मामूली सी डिग्री हासिल की है कि जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। सभी अपनी अपनी जगह ठीक हैं।
आप तो ऐसी बात ना फरमाएं मोहतरमा, आप तो ऐसी लेडी हैं जिसने गजाई मस्नुआत में डिग्री ली है जो कि ऑमलेट तक नहीं बना सकती।
मैंने तो जनाब मुर्तजा का दिफा किया है, ना कि खुद का।
घर में जब शलजम और सब्जी की खुशबू एक साथ उठती है तो इसका मतलब यह है कि गजाई सनत के इंजीनियर ने घर में किसी नई डिश का इजाद किया है।
ओहो, इन एक पीठिए बच्चों का क्या करूं मैं, अगर ये 100 साल के भी हो जाएं तब भी आपस में उलझते रहेंगे। अब बस भी करो तुम लोग।
मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मुझे शलजम चाहिए।
तो ठीक है बेटे, शलजम चाहिए, वहाँ है, जाओ जाकर खा लो।
क्या शलजम है, ले जाओ शलजम वाला, सीने का मरहम ले जाओ, होशमंद फैमिली की गजाई सनत का पकवान है, आ जाओ।
शलजम से ही पेट मत भर लेना।
अम्मी मैं भेड़िये की तरह भूखा हूँ, शलजम से कहाँ पेट भरेगा।
भाई यूनुस, शलजम खा लिया हो तो अपने कपड़े उठाकर कमरे में ले जाओ, उससे पहले अपना हाथ भी धो लो।
ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया, अम्मी का शुक्रिया, वॉशिंग मशीन का शुक्रिया, कई लोगों का एहसान मंद होना पड़ेगा। इतने दिनों में अजीज दादी के घर में रहने के बाद समझ नहीं पाया कि कब मेरे कपड़े गंदे हुए, कब मेरे कपड़े धुल गए, कब प्रेस हुए, कब पहने, कब गए।
बेचारी अजीज दादी।
तुम्हारे पापा तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, उन्हें नाराज मत करना।
वो ऐसा क्या कहना चाहते हैं?
मुझे नहीं पता, इन दिनों बहुत थके से लगते हैं, बस अगर कुछ कह दिया तो मूड खराब मत कर देना उनका, और हाँ, उनके गुस्से को ज्यादा मत भड़काना।
जो हुक्म, मैंने कब किसी का मूड खराब किया या गुस्सा दिलाया? मुझे पता है कि अच्छे बच्चे कभी वालदेन का दिल नहीं दुखाया करते। लेडी नसरीन, बा वफा।
आजकल लोगों का सड़कों पर हुजूम है, खरीदारी कर रहे हैं, फिर भी कहते हैं कि नहीं है नहीं है, ट्रैफिक ज्यादा है, तुम्हारे पापा थक जाते हैं।
आप क्यों नहीं जाती मार्केटिंग के लिए?
हम शोक मना रहे हैं, क्या मार्केटिंग कर सकते हैं?
इस बच्चे के लिए पूरा जहेज तैयार करना है।
अच्छा, मतलब अगर सोगवार ना होती तो लोगों की तरह ट्रैफिक कम करने और भीड़ भाड़ और शोरगुल कम करने में उनका साथ देती? आपको नहीं पता कि पापा को क्या काम है?
नहीं बेटे, नहीं जानती, मुझे लगता है तुम्हारे काम के बारे में पूछा चाह रहे हैं।
काम के बारे में? मेरे काम को क्या हुआ?
काम को कुछ नहीं हुआ है, वो ये जानना चाहते हैं कि उनका बेटा कहाँ काम करता
बेटा,
है।
बेटा, 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 ऐसी बातें करते हैं जैसे मैं 10 साल का बच्चा हूँ।
वो तो हो ही।
मेरे कपड़े दो, मैं ले जाऊँ।
अपना हाथ तो धो लो, वरना गंदे हो जाएंगे।
ठीक है, धो लेता हूँ।
2 घंटे से खा रहे हो।
ओ, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं।
ठीक है, ठीक है, देखो धुल गया,
जाओ।
और सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सर्कल से घूमा नीचे की तरफ, गियर बदल के निकल पड़ा और पैसेंजर मेरी तरफ झुका और मेरे कान के पास आकर कहने लगा, प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस के बीच झगड़ा हो गया और वो एक दूसरे की बुराई करने लगे, वो सबके सामने ही लड़ रहे थे। मैंने कहा, क्या मतलब, क्या वो पब्लिक के सामने इस तरह लड़ रहे थे? कहने लगा, नहीं, वो दोनों अकेले थे। उसके बाद वो सीना चौड़ा करके कहने लगा, बेटी जरा रोटी देना। हाँ, उसके बाद फिर वो सीना चौड़ा करके बोला, अरे जनाब, इस तरह की बातें दूसरों के सामने नहीं कही जाती ना। अब फिर मैंने उससे पूछा कि ये सब बातें तुम्हें किसने बताई, अब प्रेसिडेंट ने या मुल्क के चीफ जस्टिस ने? फिर वो झल्लाकर बोला, अरे छोड़ो भाई, खबर कहीं ना कहीं से तो निकल ही जाती है, तुम क्यों मेरा दिमाग खा रहे हो, मेरा खुद ही दिमाग खराब हुए जा रहा है, खामखा परेशान कर रहे हो, तुम्हें भी ये सब करने का वक्त मिला है। उसके बाद गाड़ी से उतरा और दरवाजा कस के बंद किया और चला गया।
दरवाजा भी खराब कर दिया।
हाँ भाई, तुम्हारा भी बहुत
मेरा फर्ज है।
आदमी जब घर में आता है तो घर की मालकिन के जरिए अच्छा खाना और मीठी मुस्कान आदमी के तन से थकान मिटा देती है, ईमान से सच कह रहा हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे खानदान की सभी औरतें अच्छी हैं।
बिल्कुल,
अलबत्ता मर्द लोग भी बुरे नहीं हैं।
हाँ, शाबाश शाबाश। मर्द लोग भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा बेटे, तुम अपने काम के बारे में बताओ, क्या खबर है?
पापा, अभी मेरे हाथ में एक प्रोजेक्ट है जो की सीक्रेट है, बहुत ही सीक्रेट है, लेकिन है बहुत ही नॉर्मल, और मैं वहाँ का इंजीनियर हूँ।
अच्छा, वो कौन लोग हैं? मेरा मतलब ये कि कौन लोग वहाँ काम करते हैं, सरकारी हैं, प्राइवेट वालों का है या?
वो प्राइवेट ही है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है, किसी बाकरी नाम के इंजीनियर का।
अरे जरा रुको तो, रुको
जी
तो।
बाबा
बैठो तो सही।
अच्छा बैठो, आपने कहा रुको, मैं भूल गया।
मेरे बेटे को परेशान
मतलब
कर रहे हो तुम।
ये वही बाकरी का बेटा तो नहीं जिसके साथ तुम हाई स्कूल के जमाने में एक साथ पढ़ते थे?
नाज है मुझे इस अक्लमंदी और होशियारी पर। जी हाँ, वही है। अलबत्ता ये कंपनी उसके वालिद और भाई की है, वो खुद भी कभी कभार वहाँ विजिट किया करता है। आप आएं और उनकी शानो शौकत देखें, क्या तामझाम है उनका।
बेटा, तुम्हारी स्टडी को कोई नुकसान तो नहीं होगा ना?
नहीं, आप टेंशन ना लें, इस कदर थियोरिकल स्टडी के बाद मुझे अमल और प्रैक्टिकल में तो उतरना ही होगा ना।
उसका बेटा भी वही है, यानी वो वही काम करता है?
कभी कभार आता है वहाँ, लेकिन जब भी वो वहाँ आता है सिर्फ काम को आगे बढ़ाने और फैलाने की बातें करता रहता है।
बेटी जरा एक गिलास पानी मुझे देना। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां का माहौल का असर हो जाए और तुम अपनी आगे की पढ़ाई वगैरह छोड़ दो और अपने लिए भी कुछ ऐसे ही करके बैठ जाओ।
आप इत्मीनान रखें, अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो कम से कम मुझे 200 साल की उम्र की जरूरत पड़ेगी।
इंशाल्लाह तुम भी ऐसा करोगे।
जब वक्त आएगा तो जरूर, लेकिन जब पीएचडी कर लोगे तब। देखो बेटे, तुम्हें दौलत और पैसा कमाने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ाई जारी रखो।
जी जरूर।
एक बाप की ख्वाहिश इससे बढ़कर और कुछ नहीं होती कि उसका बेटा दानिश्वर बने, एक फाजिल इंसान बने, उसूलों वाला हो।
क्या हम नहीं हैं? क्या हमें ऐसा नहीं होना चाहिए?
बहरहाल मुझे इन बातों से मतलब नहीं है, साफ लफ्जों में कहता हूँ, तुम्हें पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई की फिक्र करो। खुदा का शुक्र है कि अब तक मैंने तुम लोगों को किसी परेशानी में नहीं पढ़ने दिया है। इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं खुद ही संभाल लूंगा। खुदा का लाख लाख शुक्र है। बस इतना कहना है कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो और पैसा कमाने की बात भूल जाओ।
मैं पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने अजीज वालिद की खिदमत में अर्ज करता हूँ कि जो हुक्म।
तुम्हारी बात सुन के अच्छा लगा।
ये बताओ, तुम अजीज अम्मी को मना पाए या नहीं?
नहीं, मैं तो पीछे बैठा था। अजीज अम्मी ने भी देखा कि मैं जल्दी में हूँ तो उन्होंने भी बात नहीं निकाली, मैंने भी कुछ नहीं कहा।
अरे आखिर पता तो चले क्या करना है, जाना है या नहीं?
थोड़ी देर के लिए चलेंगे फिर वापस आ जाएंगे ना।
अजीज अम्मी को तो जानती हो ना, फौरन ही बोलेंगी कि क्या अपना फर्ज पूरा करने आए हो तुम लोग। वो बहुत ज़हीन है माशाल्लाह।
अच्छा हम एक और काम करते हैं, तुम बहार को लेकर अजीज अम्मी के पास चली जाना और उनसे कुछ इस तरह से बात करना कि मसला भी हल हो जाए और उन्हें बुरा भी ना लगे।
वो तुम्हारी माँ है और बात संभालूं मैं?
अरे भाई, मैंने अभी ईद की रात की बात छिड़ी भी नहीं थी कि उनकी भवें तन गई, मैंने भी फिर कुछ नहीं कहा और उठकर चला आया बस।
रहने दो, बहुत अच्छा किया जो कुछ नहीं कहा। ठीक है, मैं जाकर मिल लूंगी। तुम सभी मुश्किल काम मेरी गर्दन पर डाल रहे हो, ये बात याद रखना।
माफ करना,
कोई बात नहीं।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
हाँ, ठीक
खाना
है,
लजीज
है।
था। ओ, बेटा जरा एक गिलास पानी और देना।
कहते हैं खाते वक्त ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमने तो बहुत बात।
हाँ, यही है, डालो बेटा। तुम्हारा शुक्रिया।
बहुत ही लजीज बना था ना।
किस रेस्टोरेंट से लिया था?
खुदा का शुक्र कि तुम्हें अच्छा लगा।
इस ईद मनाने और आने जाने से मुझे नफरत है। बिल्कुल बच्चों की तरह कपड़े और जूते चप्पल के पीछे भागने लगते हैं, हालांकि उनके पास 10 जोड़ी है, लेकिन ईद की रात नया कपड़ा, नया जूता सब चाहिए।
जो लोग के दौड़ते हैं उनके पास 10 जोड़े नहीं होते, कोशिश करते हैं कि जो जूते पहने हुए उन्हें नया कर लें।
तुम इन्हें नहीं जानते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो वापस आ जाते हो, उनकी अलमारियों में कपड़े और जूते भरे रहते हैं। अगर चाहो तो मैं अभी अपनी 10 सहेलियों से मिलवा सकती हूँ ताकि साबित हो सके।
हाँ, हो सकता है कि तुम्हारी सहेलियां ऐसी हों।
मेरी सहेलियां? हो सकता है कह रहे हो कि मैं तुम्हें अपनी सहेलियों से मिलवाऊं? तुम गलत हो, मैं मिलवाने नहीं वाली, तुम्हारी अपनी मंगेतर है।
शुक्रिया, तुम्हारी मेहरबानी है।
शुक्रिया किस बात का?
ये कि मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए अहमियत रखती है।
हाँ बिल्कुल अहमियत रखती है, मेरे डैड ने तुम्हारी लाइफ के लिए प्रोग्राम बनाया है।
कैसा प्रोग्राम?
वो चाहते हैं कि उनकी बीवी के खानदान से एक इंजीनियर उनकी कंपनी का बड़ा आदमी बन जाए, वो गैरों से थक चुके हैं।
तुम्हारे डैड की मेहरबानी है, लेकिन मैं तजुर्बेकार नहीं हूँ, अभी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया।
फरीद उन एहतिशाम की खसूसियत ये है कि अगर किसी में सलाहियत पाई जाए तो कुछ ही महीनों के अंदर उसे माहिर आदमी में तब्दील कर देते हैं जो हर लिहाज से आगे हो।
अलबत्ता तामीराती फन में अच्छे डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है और वो उसी में जल्दी तरक्की भी करते हैं।
मेरे डैड के काम में अगर मगर लाओगे तो उन्हें बुरा लगेगा, वो तुम्हारा हाथ खुला छोड़ देंगे ताकि तुम अपनी सलाहियत साबित कर सको।
कोशिश करूंगा साबित कर दिखाऊं।
जरूर। ये लानती कैवान, जो गाड़ी उसके हाथ में आती है उसी को इस्तेमाल कर लेता है।
रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। ये लो।
ये तुम्हें पसंद है?
मेरी अंग्रेजी अच्छी है, लेकिन अंग्रेजी गाने ज्यादा नहीं समझ पाता हूँ। अंग्रेजी गानों में ज्यादातर बरतानवी लिटरेचर का अमल दखल होने के साथ उनकी इस्तेलाहें, मिसालें और इशारों किनायों का इस्तेमाल हुआ रहता है, इसलिए उनका समझना मेरे लिए मुश्किल है।
ये गली कूचों में बजने वाले गाने तुम्हारे लिए लगाऊं, जैसे
अगर भूल गया है वादा किया है वाई वाई मेरा दिल टूट गया अब ताकत रही न वल्ला। इस तरह के गाने सुनने हैं तुम्हें?
नहीं नहीं, ये तो लाला जारी हैं, 70 के अशरे के हैं।
तो फिर तुम्हें क्या पसंद है?
मुझे ऐसा म्यूजिक पसंद है जो दिल के गम को ना बढ़ाए, इश्क में हारने और टूटने की याद ना दिलाए, और उछल कूद और बिला वजह की धमा चौकड़ी भी पसंद नहीं।
इश्क में हारना टूटना धमा चौकड़ी, लो पहुंच गए। वैसे मैं समझ नहीं पाई हूं कि तुम्हें क्या पसंद है। ये रहा,
अच्छा गाड़ी में कैलकुलेटर है क्या? मोबाइल से अकाउंट का काम करना बहुत मुश्किल है।
नहीं है, हमारे अकाउंट का काम कोई दूसरा करता है।
ये तो है। रजा मीटर के साथ वहां जाओ, दीवार के कोने में खड़े हो जाओ। और इधर और पीछे जाओ, दीवार से सट जाओ। ठीक है, उस तरफ जाओ। तो पीछे जाओ, पीछे। माफ करना, ये जगह तो नंबर वन है। माफ करना, चलो।
कहाँ जनाब?
क्या मतलब?
ये कोई टैक्सी है जो ऊपर कूद पड़े?
नहीं, टैक्सी तो नहीं है। माफ करना, क्या तुम सीरियस हो?
मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम यहाँ पर काम करोगे, सैलरी लोगे, मैं कोई तुम्हारी पर्सनल ड्राइवर तो हूँ नहीं। वैसे रिश्तेदारी की वजह से एक आध बार लिफ्ट दे दी।
मैं माफी चाहता हूँ।
रंग तो देखो, तुम आखिर हो कौन? दरवाजा बंद करो। कहाँ जाएंगे जनाब?
मैं अब ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा।
अब जाने भी दो ना, मैंने मजाक किया था हंसने के लिए। अब ज्यादा बनो मत, वरना तुम्हें रिजाई के अंडर दे दूंगी।
रिजाई? वो कौन है?
वही मैडम रिजाई जो हमारे यहाँ है, डार्क के ऑफिस के इंचार्ज। उनकी कहानी तुम्हें नहीं सुनाई क्या?
नहीं।
एक बात बताऊं, तुम्हारे जहन में कभी ये बात नहीं आई कि वो हमेशा दस्ताना क्यों पहने रहती हैं?
ओ हाँ, क्यों नहीं। बहुत बार मेरे जहन में ये बात आई कि पूछूं, लेकिन इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा।
उसके हाथ की पुश्त पर बहुत ही भयानक निशानात हैं। उसका पूरा हाथ जख्मी है। उसने अपने शौहर को अपने हाथों से मार डाला। उसका शौहर बहुत छटपटाया, बहुत कोशिश की छुड़ाने की, लेकिन रिजाई मैडम ने उसका गला नहीं छोड़ा और बड़ी बेरहमी से उसे मार डाला।
ऐसा क्यों किया?
क्योंकि उसने दूसरी शादी कर ली थी। जरा आगे सुनो, कहानी और भी दिलचस्प है। उसने अपने शौहर को मार डाला, फिर बड़ी इज्जत के साथ उसको नहलाया, उसे कफन पहनाया और फिर घर के डाइनिंग हॉल में दफन कर दिया।
इतनी बेरहमी बढ़ती?
कुछ दिनों के बाद जब लोगों ने देखा कि इस आदमी की कोई खबर नहीं है, तो लोगों ने पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस ने भी अपनी इब्तदाई तहकीक के दौरान उस पर शक किया। उसने भी फौरन कबूल कर लिया और उसे फांसी की सजा हो गई। मैडम रिजाई डैड को पहले से जानती थी, उन्हें खबर कर दी। डैड ने भी उस लड़के के घर वालों का मुंह पैसों से बंद कर दिया और केस वापस करवाया। उसके बाद डैड ने कंपनी में नौकरी दे दी।
इस लिहाज से मैडम रिजाई की जिंदगी फरीदून खान की कर्जदार है।
आपने बताया नहीं कि कहां जाएंगे इंजीनियर साहब?
मैं थोड़ा आगे उस कट पर उतर जाऊंगा, इससे ज्यादा तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा।
क्या सच में यहीं पर उतरोगे?
हाँ हाँ हाँ।
तकल्लुफ तो नहीं कर रहे?
नहीं नहीं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया।
अगर झूठ बोलोगे तो मैडम रिजाई के हवाले कर दूंगी।
नहीं नहीं नहीं, झूठ तो बिल्कुल नहीं बोल रहा। रिजाई मैडम नहीं, बस तुम जरा डिक्की खोलो, मैं अपना सामान निकाल लेता हूँ। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
سرانجامه معنای سرانجامه